कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से कैंसर का इलाज करवा रहे लोगों को अपने ट्रीटमेंट के लिए कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मामलों के जानकार कहते हैं कि सोशल आइसोलेशन के कारण जो तनाव हो रहा है उसके कारण भविष्य में कैंसर के ज़्यादा मामले सामने आ सकते हैं। साधारण रूप से भी कैंसर के मरीजों को इन्फेक्शन के डर से अलग थलग रहना होता है। केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट लोगों के इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। ब्रेन कैंसर से लड़ रही एलिसा मैकवे को कोविड-19 के कारण लागू किया सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मानसिक संताप दे रहा है।
So when you go to the oncology clinic for chemotherapy or other treatments that they offer, you usually get to have a support person with you, which is obviously good for your mental health to have someone there holding your hand. Due to COVID-19, they're not allowing that support person in the actual clinic anymore. You just have to deal with it all by yourself, which is quite a big deal, really. So, yeah, but it's obviously for good reasons. They don't want the extra risk of outsiders carrying stuff and bringing it into the actual clinic where the most vulnerable people are getting treated.
2018 में कैंसर का पता चलने के बाद सुश्री मैकवे की केमो और रेडियोथेरेपी हो चुकी है। कुछ दिन वे ठीक रही, लेकिन इस साल जनवरी में कैंसर के दोबारा आने के कारण उनकी सर्जरी हुई, जिसके बाद वे अब चल फिर नहीं पाती। उनकी कुछ मेडिकल कंसल्टेशन टेली हेल्थ के द्वारा ऑनलाइन हो जाती हैं, लेकिन उन्हें चलने फिरने के लिए रिहैबिलिटेशन में जाने का फैसला लेना होता है।
And I had to weigh up whether it be better for me to not get that physical therapy versus possibly getting the COVID-19. So it was a big decision. So now I go to rehab, but they wear masks and gloves and I wear masks and gloves and yeah, we sit a meter and a half apart, but with the physio, it's pretty impossible to have a physio a meter and a half apart, a bit like a hairdresser, I suppose. So, yeah, that's been tricky.
New South Wales की Cancer Council ने lockdown के कारण अपने support network को digital platform पर transfer कर दिया, जिससे मरीज और support worker जुड़े रहें। कैंसर काउंसिल की मुख्य कंसल्टेंट जेन प्रियो बताती हैं कि बदलाव कैसे काम करता है।
We've increased our telephone support group programs for carers and people with cancer. All our counseling services are now face to face. We're looking at doing podcasts. We've got information booklets about isolation and how to, you know, contact friends and family via social media, and just sort of general information tip sheets to reduce that isolation for people.
लॉकडाउन के कारण कुछ दूसरी चिंताएं भी सामने आईं, जिनमें ज्यादा शराब पीने, कम शारीरिक गतिविधि और खराब खानपान प्रमुख हैं। कैंसर काउंसिल की न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी कमेटी की चेयरपर्सन क्लेयर ह्यूज बताती हैं कि इन सब के दूरगामी परिणाम होंगे।
So we also know that some of these factors and behaviors are things that change when we're under stress. So we might see that people are drinking more and drinking more frequently. They're not as motivated to be active and they're making some poorer food choices that in the long term concern us because if we carry these behaviors over post-isolation and post-COVID sort of lockdown, then this could really impact over the longer term.
लॉकडाउन के दौरान सुश्री ह्यूज लोगों से गुजारिश कर रही हैं कि वे दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर जीवनचर्या की गतिविधि करें। उनके अनुसार संतुलित भोजन सबसे जरूरी है।
We know that it's also really important to make sure we're eating a healthy diet and making healthy food choices while we're staying at home. It's an opportunity, I guess, being at home for longer periods to do more cooking, more home cooking, including more fruits and vegetables and fiber in the meals that we're cooking. But making sure some of, if that snacking behaviour is creeping up, as we've heard from many people, it is, that it's where we're snacking on those healthier snacks. Like fruits and vegetables and nuts.